तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ काम ऐसे हैं जो बाहर के लोग कर सकते हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो स्वयं करने चाहिए। दोनों मिलकर के ही एक पूर्णता बनती है। अकेले बाहर के अनुदानों से आज तक किसी का काम नहीं चला और केवल अकेले प्रसाद से ये आदमी कोई संपन्न आज तक बना नहीं है। दोनों के सहयोग होता है, बाहर के अनुदान और अपना प्रसाद दोनों को मिला दें तो एक बात पूरी बन जाती है। अनुदान बाहर से खाना पका करके किसी ने दिया, बहुत सुंदर भोजन, पौष्टिक भोजन, लेकिन आपको हजम तो आपको ही करना पड़ेगा। मुँह से तो आप ही चबाएंगे, नहीं चबाएं तब बाहर वाला ही चबा के आपके मुँह में डाल जाए, नहीं मुश्किल है। और फिर आपके पेट में बैठ करके कोई आदमी हजम करके खून में शामिल कर दे, ये और भी मुश्किल है। ये काम तो हर हालत में आपको ही करनी चाहिए। बाहर का आदमी अधिक से अधिक ये कर सकता है कि आपको बहुमूल्य भोजन बिना कीमत के भी पका के दे दे और आपको सम्मानपूर्वक खिलाए। उसका काम था, वो पूरा हो गया, आपका काम है कि उसको संभाले। आपकी शादी हुई थी ना, शादी हुई थी तो आपको अच्छी खासी धर्मपत्नी मिली थी ना, ये किन्ने दी थी। उस लड़की के माता पिता ने बड़ी मेहनत से बड़ी सुयोग्य लड़की बना करके, पाल पोस करके, शिक्षित बना करके आपके हवाले की थी। एक काम पूरा हो गया ना, हाँ हो गया। लेकिन लेकिन एक काम बाकी रह गया है कि आपको के घर में उस धर्मपत्नी को आने के बाद में आपका देखभाल आपको ही करनी पड़ेगी, निर्वाह आपको ही करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारियाँ आपको भी वहन करनी पड़ेंगी। अगर आप उनकी जिम्मेदारियाँ वहन नहीं कर सकते और आप उनके खान पान का, रहन सहन का प्रबंध नहीं कर सकते और आपकी उसको इज्जत दे करके सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते, तो उनके माता पिता का दिया हुआ अनुदान आपके लिए निरर्थक चला जाएगा। और वो आपको धर्म पत्नी मिली है, आपके कोई ख़ास काम ना आ सकेगी, आपके लिए भार बन के रहेगी। आप भी कुछ कीजिए, दूसरे भी कुछ करेंगे, दोनों को मिला देने से एक बड़ी बात बन जाती है। यहाँ हमने जो कुछ बना है आपके लिए बना करके रखा है, बहुत सुंदर और बहुत कुछ बना के रखा है, लेकिन आपको हजम तो आपको ही करना चाहिए, आपको महसूस तो आपको ही करना चाहिए। हमारे करने से का जो सीमा थी वो हमने पूरी तरीके से कर दिया। क्या कर दिया? आपके लिए एक वातावरण बना करके हमने रखा है। यहाँ शांत कुंज में क्यों बुलाया? वातावरण के लिए बुलाया है। जो आपको क्रियाकृत कराए जा रहे हैं वो तो आप अपने घर पर भी कर सकते थे, घर पर आप न कर सकते हो। कौन सी चीज़ ऐसी जो आप घर पर नहीं कर सकते थे? खान पान का जो आपको नियम बंधन बताए गए हैं, क्या आप घर पर नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है जो नहीं कर सकते? जप अनुष्ठान जो आपसे कराया जा रहा है, क्या आप घर नहीं कर सकते थे? जरूर कर सकते थे। जो पुस्तकें पढ़ने और जो नियम मर्यादाएं पालन करने के लिए यहाँ कहा गया है, आप घर पर भी कर सकते थे, लेकिन फिर यहाँ क्यों बनाना पड़ा? यहाँ का वातावरण है, वातावरण बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। और वातावरण का आप कीमत समझिए, वातावरण का आप कीमत समझेंगे नहीं तो आप भूल करते रहेंगे। गुरु वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी से कहा, अब बुढ़ापे का समय आ गया, अब भगवान की भक्ति में और जीवन को ऊंचा उठाने में कुछ प्रयत्न करना चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा, तो बताइए फिर। तो उन्होंने कहा, यहाँ क्या बताए, वातावरण में चलना पड़ेगा। यहाँ का वातावरण कहाँ है? यह अयोध्या के वातावरण में आप रहते हैं, लेकिन यहाँ वातावरण की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके संबंधी रहते हैं, कुटुंबी रहते हैं, राजपाट के लोग आते रहते हैं, कितने आपको विचार करते रहते हैं, कितनी आपको खींच पैदा होती है, कितना आपको सहयोग समर्थन मिलता रह सकता है, मिलता है, कितनों से आपका लगाव है, कितनों से आपको नाखुशी है। फिर यहाँ के वातावरण में आध्यात्मिकता का पनप जाने की कोई संभावना नहीं है। आपको अयोध्या छोड़नी चाहिए। अयोध्या के साथ में जो आपके जुड़े हुए मोह बंधन हैं, वो जब तक जकड़े हुए रहेंगे मन भगवान की तरफ चलेगा ही नहीं, भक्ति आप कर ही नहीं सकेंगे, आध्यात्मिक उन्नति का कोई रास्ता खुल ही नहीं सकेगा। इसलिए आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? गुरु वशिष्ठ ने कहा, तो हमारे नज़दीक चलिए जहाँ हम रहते हैं। गुरु वशिष्ठ की गुफा वहीं थी हिमालय पर, उसके पास उन्होंने चारों भाइयों को बुला लिया। रामचंद्र जी देवप्रयाग रहने लगे, लक्ष्मण जी लक्ष्मण झूला पर रहने लगे, भरत जी ऋषिकेश में आके अपने जम गए, और शत्रुघ्न ने मुनि की रीति पर अपना स्थान और अपनी जगह बना लिया। चारों अलग अलग रह करके गुरु वशिष्ठ के सान्निध्य में शिक्षण प्राप्त करने लगे। क्यों? अयोध्या में क्या कमी थी? अयोध्या में वातावरण नहीं था, हिमालय का वातावरण है, संस्कारी वातावरण, जिसमें कि हजारों वर्षों से लोगों ने तप किए हैं, साधना की है, वो कहाँ था अयोध्या में बताइए। अयोध्या में तो राजपाट होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, मुकदमा होते थे, दूसरी बातें होती थी, पर वहाँ तप का वातावरण कहाँ था। हजारों वर्षों से तप जिन ऋषियों ने किया है उससे हिमालय का वातावरण बन गया, इसलिए रामचंद्र जी को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मान करके देवप्रयाग आना पड़ा। योग वशिष्ठ उन्होंने वहीं पढ़ाई, अयोध्या में नहीं पढ़ा सकते थे। राजपाट की सलाह देते थे, आप ऐसे कीजिए, गद्दी दी ऐसे चलाइए, लेकिन आध्यात्मिक विषयों के लिए उन्होंने देवप्रयाग मुनासिब समझा और वहीं उनसे साधना कराई। चारों भाइयों समेत भगवान वहीं रहे, क्योंकि वातावरण की बहुत अपेक्षा होती है आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं, सांसारिक जीवन में भी, आप सांसारिक जीवन की बात जानते हैं ना, सांसारिक जीवन में भी अगर वातावरण न मिले तब फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। चंदन, खुशबूदार चंदन मैसूर बंगला और केलाके में पाया जाता है। उसी चंदन के पेड़ अगर आप वहाँ से ले आवें और दूसरी जगह लगा दें तो उसमें सुगंध ही नहीं आएगी, सुगंध ही नहीं आएगी। चंदन तो पैदा हो जाएगा, चंदन न होता ऐसी क्या बात है, पर जो सुगंधी होती है उस वहाँ के वातावरण, वहाँ की जलवायु पर टिकी हुई है। नागपुर के संतरों के बारे में सुना है ना आपने, नागपुर के संतरे, बम्बैया केले, आप सुनते हैं क्यों साहब, वही संतरे यहाँ ले आइए, अपने यहाँ लगा के देखिए, देखिए वैसे जैसे मीठे नागपुर में होते हैं आपके यहाँ नहीं हो सकते। बम्बैया आम जैसा मीठा होता है वैसा नहीं हो सकेगा, कलकतिया केला जैसे मीठा होता है वैसा आपके यहाँ नहीं हो सकेगा। कारण, कारण तो कुछ भी नहीं, कारण तो एक ही है कि वहाँ का वातावरण की अपनी विशेषता है। आपने बंगाल निवासियों के स्वास्थ्य देखे हैं, दुबले वाले, छोटे छोटे, ठंडे, और सीमा प्रांत के लोग देखे हैं ना आप, सीमा प्रांत के लोग कितने बड़े बड़े, कितने मोटे मजबूत होते हैं, क्या खाते हैं, वही दाल रोटी वो खाते हैं, कहीं खाते हैं तो क्या बात है, वो इतने मोटे कैसे आते हैं और मजबूत कैसे आते हैं और बंगाल वाले कैसे कमज़ोर रह जाते हैं। वातावरण का सवाल है, संसार का वातावरण भी एक असर रखता है। बीमारों को वहाँ सैनिटोरियम में ले जाते हैं ना, सैनिटोरियम में क्या बात है, ये वो इलाज यहाँ करवाने, वहाँ की जलवायु अलग तरह की होती है। जलवायु में, अच्छी जलवायु में रह करके मरीज को इलाज कराने से बात बहुत जल्दी बन जाती है, और अपने घर रह करके आप करें तो वो इलाज उतना कारगर नहीं हो सकता। महाभारत का युद्ध हुआ था तब भगवान ने कोई ऐसा स्थान तलाश करवाया था जहाँ के दोनों में लड़ाई झगड़ा होने में सहायता मिले, नहीं तो दोनों भाई भाई हैं, लड़ेंगे नहीं, फिर आपस में सुलह मशवरा कर लेंगे। भगवान ने आदमियों को, नौकरों को भेजा और ये कहा ऐसी ज़मीन ले दो जहाँ लड़ाई झगड़े का वातावरण बना हुआ हो। दूत गए, उन्होंने दो भाइयों को भाइयों से लड़ते हुए देखा और एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला। खबर ला के दी, बस उन्होंने कहा वो वही जगह ऐसी है खून खच्चर की, वहीं कुरुक्षेत्र कराना चाहिए। भगवान ने महाभारत के लिए जो स्थान चुना वो कुरुक्षेत्र चुना, कुरुक्षेत्र का वातावरण ऐसे ही था, ऐसे वातावरण में ही लड़ाई झगड़ा होना संभव था। एक और भी पुरानी बात है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बैठा करके ले जा रहे थे तीर्थ यात्रा कराने के लिए। मेरठ के पास, यूपी में एक मेरठ नाम की जगह है, वहाँ मेरठ के पास उस लड़के ने कहा क्यों जी, माता पिता से आपसे कहा, आपकी आँखें ही तो खराब हैं, टांगें तो खराब नहीं हैं, हम आपकी लकड़ी पकड़ लेंगे और आप लोग चलिए ना पीछे पीछे, हमारे कंधे पर सवार क्यों होते हैं। श्रवण कुमार के पिता अचंभे में रह गए, अचंभे में रह गए। उनका मतलब ये था कि हमारा लड़का सारे संसार भर में अजर अमर होकर के रहे, सारी दुनिया का उसका नाम लिया करे, उसके बच्चों को इतिहास देने के लिए उसका जीवन की गाथा ऐसी बन जाए, ये मतलब था, सवारी गांठना मतलब थोड़ी था उनका। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटे, जो ऐसे तुम कहोगे वैसे ही करेंगे, पर एक काम करो, आज रात को हम ठहरेंगे नहीं यहाँ, यहाँ से बहुत दूर चलना चाहिए और इस इलाके को पार कर लेना चाहिए। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को का कहना माना और उस इलाके से बहुत दूर चला गया। जैसे ही इलाका ख़त्म हुआ वैसे ही श्रवण कुमार को बहुत आश्चर्य हुआ अपने ऊपर और वो फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा पिताजी मैंने क्या कह दिया आपको, मैंने कहा था आप अपने पैरों पर चलिए, मेरे लिए क्या कितना बड़ा श्रेय सौभाग्य, जो मिला था उसको मैं छोड़ना चाहता था। उन्होंने, उनके पिता ने कहा बेटे डरने की कोई बात नहीं है, जहाँ तुम्हारे मन में वो विचार आए थे, वो विचार ऐसा, वो स्थान ऐसा था कि जहाँ मैं नाम का एक दानव हुआ है उसने अपनी माता पिता को मार डाला था, बस उसी स्थान पर होकर चल रहे थे और उसके संस्कार उस भूमि में पड़े हुए थे, उस भूमि के संस्कारों की वजह से तुम्हारे ऐसे मन में विचार आ गए। समझे ना, क्या समझे, वातावरण का बहुत भारी असर होता है, इसलिए आपको हमने यहाँ वातावरण में बुलाया है। हिमालय के नज़दीक बुलाया है, हिमालय जहाँ से शुरू होता है, जहाँ ऋषियों ने सबका सप्तऋषियों का स्थान था, जहाँ स्वर्ग था। स्वर्ग कहाँ था? स्वर्ग हिमालय के उस इलाके में है जिसको नंदनवन कहते हैं, गोमुख से आगे स्वर्ग जमीन पर था, सुमेरु पर्वत वहीं है। देवता भी इसी इलाके में रहते थे हिमालय वाले में, और सारे के सारे महत्वपूर्ण ऋषि सप्तऋषियों से लेकर के सनक सनंदन तक और नारद से लेकर के आदि गुरु शंकराचार्य तक जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए उनकी साधना इसी स्थान में हुई है, इसलिए हिमालय का अपना वातावरण है। गंगा की महत्ता तो आप सुनते हैं ना, गंगा की कितनी बड़ी महत्ता है, गंगा को सारा संसार जाने क्या क्या मानता है भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से, यहाँ गंगा भी प्रवाहित होती है। जिस स्थान पर ये हमने शांति कुंज बनाया है, इसमें हमारे गुरुदेव ने इस स्थान का महत्व बताया था कि सात ऋषियों का यहाँ तप हुआ था। पांच गंगाएं जो अभी तो दिखाई पड़ती हैं, यहाँ सात ऋषियों की सात गंगाएं थीं, दो गंगाएं गायब हो गई हैं, वो कहाँ गई? उसी स्थान पर थीं जहाँ शांति कुंज बना हुआ है। एक धारा यहाँ बहा करती थी, बंधा लगा करके यहाँ से उस धारा को रुकवा दिया है, लेकिन तभी गंगा का पानी उछलता रहता है जमीन में से। शांति कुंज के पीछे एक नाला बहता है, वो जमीन में से उछल के निकलता है। और कहाँ है, आप जरा सा गड्ढा खोदिए, गंगा जल तैयार है। आप गंगा जी का लेवल उसका देखिए, ये गंगा का तट है, गंगा जी का तट नहीं, बीज गंगा है, और ये हिमालय का द्वार है। और यहाँ आपको ऐसा प्राणवान सानिध्य है जैसे कि शेर और गाय दोनों मिलकर के जहाँ पानी पीते थे, ऐसे ही वातावरण है जहाँ ऋषियों के आश्रम में, जहाँ बहुत शानदार यहाँ सानिध्य, यहाँ ऐसे लोगों का सानिध्य आपको मिला है जिसके लिए आप सारे हिंदुस्तान भर में अगर घूमें और ये तलाश करें कि ऐसे प्राणवान सानिध्य कहीं मिलेंगे क्या, ना ऐसे प्राणवान सानिध्य प्राचीन काल में ऋषियों के रहे होंगे, मैं ये तो नहीं कहता, कभी नहीं थे, पर आज आपको ऐसा आध्यात्मिकता का सही वातावरण अन्यत्र मिलेगा नहीं। ऐसे शांत कुंज में आपको हमने साधना करने के लिए बुलाया है, तो बात पूरी हो जाएगी ना? बात पूरी नहीं हो सकती, आपको इसके साथ में अपनी श्रद्धा संजो करके रखनी पड़ेगी। श्रद्धा को संजो करके अगर आप नहीं रखेंगे तब फिर ये भी जमीन वैसी है, मछली पकड़ने वाले भी गंगा में घूमते रहते हैं, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो क्या फायदा कर सकती है? श्रद्धा के अभाव में, श्रद्धा के अभाव में ये गंगा तरण तारणी हो जाती है, मृतकों का उद्धार कर देती है, और श्रद्धा के अभाव में यही केवल नहर रह जाती है, पानी रह जाती है। आपकी श्रद्धा का अपना समन्वय करना पड़ेगा। आप यहाँ निवास करते हैं तो कृपा करके इस अपनी श्रद्धा को जीवंत कीजिए, और आप अपने आप को ये अनुभव करना शुरू कीजिए कि आप किसी ऐसे स्थान पर निवास करते हैं जहाँ के वातावरण आपकी इस साधना को सफल बनाने में समर्थ, सफल यहाँ बना सकते हैं। ये सप्तऋषियों की तपस्थली है। गायत्री के ऋषि विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र का साक्षात्कार किया है, ठीक इसी स्थान पर तप करते थे। सात ऋषि हैं ना, उनमें एक विश्वामित्र भी है। विश्वामित्र कहाँ रहते थे? कुटिया गांव थी, यही थी जहाँ शांति कुंज है, ये विश्वामित्र का स्थान है। वातावरण का कितना असर पड़ता है आपने देखा है ना, टिड्डा बरसात के दिनों में हरा होता है और गर्मी के दिनों में पीला हो जाता है। क्यों पीला क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि चारों ओर सूखी हुई घास, पीला हुआ रेत दिखाई पड़ता है, उसको देखते देखते वह पीले रंग का हो जाता है। बरसात में हरा रंग चारों ओर छाया रहता है, हरा हो जाता है। भट्टी के नज़दीक बैठे हैं ना, भट्टी गर्म होती है तो जो उसके नज़दीक बैठने वाले भी गर्म हो जाते हैं। बर्फ़ की फैक्ट्री में कभी आप घुसें, बर्फ़ के भीतर उसमें ठंडक पड़ती रहती है, जो घुसता है वो भी ठंडा हो जाता है। ये ठंडा है, ये भट्टी है, ये बर्फ़ की फैक्ट्री है। आपका यहाँ अनुभव आप ये करेंगे एक चीज़ है, लेकिन एक बात फिर रह जाती है, यहाँ का वातावरण आपसे पूरा लाभ मिल जाए वो मिल ले सकेगा। आपकी श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा अगर आपके अंदर न हो, आप केवल इसको इमारत देखते हो, तो कोई आश्रम देखते हो और कोई क्वार्टर देखते हो और कोई होटल धर्मशाला देखते हो, तो आपके लिए ठीक वही है जो आप देखते हैं। आपकी श्रद्धा अगर जगी तो ये तीर्थ है, ये गायत्री का हमने तीर्थ बनाया है। इसमें तीर्थों की जो विशेषताएं होती हैं वो सब विशेषताएं पैदा की है हमने, कोई कमी नहीं छोड़ी है कि जो एक शानदार और श्रेष्ठ और समर्थ तीर्थ बनाने के लिए किसी स्थान के लिए जो प्रयत्न किए जाने चाहिए वो सारे प्रयत्न किए गए हैं। रामचंद्र जी ने 10 अश्वमेध किए थे, इसलिए 10 अश्वमेध घाट तीर्थ हो गया। और बड़ी बड़ी बातें दुनिया में जाऊँगी, तीर्थ हमेशा से थोड़ी थे, प्रकृति के सभी स्थान है ऐसे ये भी थे, लेकिन जब कोई महान घटनाएँ घटित हो गई और कोई महान कार्य संपन्न हो गए तो वो स्थान बन गए तीर्थ। तीर्थ के लिए इस भूमि को संस्कारवान बनाना पड़ता है। संस्कारवान प्राचीन कालीन ऋषियों ने गुरुकुल बनाए थे, आरण्यक बनाए थे, साधना के बड़े बड़े अनुष्ठान संपन्न होते थे। हम भी तो यही कर रहे हैं। यहाँ कितने 24 लक्ष के प्रश्न हो चुके हैं आप जानते हैं। हर साल नवरात्रियों में 24 करोड़ का यहाँ प्रश्न हो जाता है। हर दिन यहाँ नौकुंड के हवन में हजारों आहुतियाँ दी जाती हैं। यहाँ अखंड दीपक जलता रहता है। यहाँ हमारी और माता जी की नियमित रूप से कठोर तपस्या अभी भी चलती रहती है। इससे वातावरण नहीं बनेगा, वातावरण बनता है और हमारे गुर्दे परोक्ष रूप से यहाँ छाए रहते हैं। गायत्री माता का प्रकाश और आलोक आप चाहें अगर आपके अंदर श्रद्धा हो तो अनुभव कर सकते हैं। यहाँ गायत्री माता का आलोक छाया रहता है, यहाँ हमारे गुरुदेव का संरक्षण छाया रहता है, जहाँ हमारा प्राण फैला रहता है। जहाँ आपको कहा था ना एक दिन कि अपने आप को अनुभव कीजिए कि आप माता जी के गर्भ में निवास करते हैं, आप सही अनुभव करते हैं। मुर्गी अपने अंडे को छाती के नीचे लगा करके बैठी रहती है और अंडा पकते रहते हैं। हम लोग भी आपको छाती से लगा के बैठे रहते हैं और आपको पकाते रहते हैं। इतना होते हुए भी जिस बात के लिए आज आपको निवेदन किया जा रहा है वो ये है कि आपकी स्वयं की श्रद्धा जीवंत रहनी चाहिए। अगर आपने अपनी श्रद्धा का परित्याग कर दिया तो इस वातावरण से आपको कतई कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे दूसरे लोग भी आते हैं, कोई चोर सांप भी आते होंगे, कोई चक्के उठाईगिरे भी आते होंगे, कोई और मेहनत मजूरी करने वाले लोग भी आते होंगे, आप भी उसी तरीके से यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ रिक्शे वाले आते हैं, मोटर ड्राइवर आते हैं, स्कूटर लेके आते हैं, बस बीड़ी पीते हैं, दरबार चले जाते हैं, भाग जाते हैं। उनके लिए इस आश्रम का कोई महत्व नहीं, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं। श्रद्धा के अभाव में बाहरी चीज़ें कोई ज़्यादा लाभ नहीं दे सकते। आपको आज मैं भाव श्रद्धा के ऊपर बहुत जोर देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ से लाभ उठाना चाहते हो तो आप श्रद्धा को मरी हुई मत छोड़ना, चमत्कार मत देखना। चमत्कार दिखाइए। क्या चमत्कार दिखाया? कुछ ऐसा दिखाइए, कोई अचंबा दिखाइए, कोई घोड़ा बंदर दिखाइए, कुछ लक्ष्मी गणेश दिखाइए, कुछ ये बेकार बात मत कहिए। आप श्रद्धा जगाइए और आप यहाँ के कण कण में से अमृत बरसता हुआ और आलोक उछलता और उभरता हुआ देखिए। श्रद्धा अगर कहीं है तो नहीं है तो मिट्टी है या और दूसरे इमारत होती है, ये भी इमारत है। मीरा को एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया गया था। उस पत्थर के टुकड़े को लेकर के मीरा ने ये मान लिया कि हमारे पति हैं और ये भगवान हैं। उनकी श्रद्धा ने इस पत्थर को साक्षात भगवान बना दिया। उसने गिरधर गोपाल ने मीरा का जहर पी लिया था, जहर का प्याला पी गया था। मीरा बचे हुए पानी को पी करके झोंकी तो बनी रही थी। सांप का पिटारा आया था, गिरधर गोपाल पत्थर से उन सांपों से खेलते रहे। मीरा को आखिर में पिटारा बंद कर दिया, रख दिया। मीरा को किसी ने नहीं काटा, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कैसे हो गया? अरे गिरधर गोपाल की बात। गिरधर गोपाल कौन? पत्थर का टुकड़ा नहीं, सशक्त और जीवंत। कैसे? मीरा ने अपनी श्रद्धा को समाप्त किया था। श्रद्धा को मिल जाने से ही पत्थर गिरधर गोपाल बन सका और अब वो पत्थर जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है आप जाके देख सकते हैं। इसमें कोई चमत्कार नहीं। पत्थरों में क्या चमत्कार हो सकता था, क्या होगा? केवल श्रद्धा से पत्थर भी भगवान बन सकते हैं। एकलव्य की बात सुनी है ना आपने? एकलव्य एक भील का लड़का था। भील के लड़के ने एक मिट्टी के गुरु बना लिए द्रोणाचार्य, और मिट्टी के द्रोणाचार्य इतने समर्थ सिद्ध हुए कि जो कौरव और पांडवों को जो बाण विद्या असली द्रोणाचार्य ने सिखाई थी उससे कहीं ज़्यादा उनको आ गई। किनको आ गई? एकलव्य को। रामकृष्ण परमहंस थे काली के अनन्य उपासक थे। लोगों ने शिकायत कर दी, ये अन्न इसमें से झूठन फैला देते हैं और जो भोग है स्वयं खा जाते हैं। रानी रासमणी ऊपर छत पर गई और वहाँ से छुप करके देखती रही। सही बात ये हुई, काली से कहने लगे, माँ आप भोजन कीजिए। उन्होंने कहा वो तो छुप रही, क्या कहती। रामकृष्ण ने कहा तो अच्छा, तो हम पहले खा लें, पहले बेटा खा लेगा तब माँ खाएगी। ऐसे किया, उन्होंने आधा भोजन स्वयं कर लिया और जब उससे कहा तो फिर माता अब आपको करना पड़ेगा। बस रानी रासमणी ने देखा पत्थर की मूर्ति के हाथ हिलने लगे। उन्होंने इसमें थाली में जो भोजन था वो उठाया और निगल लिया, सारा खा गई। खाली थाली धोने के लिए रामकृष्ण परमहंस मंदिर से बाहर निकल रहे थे तब रानी रासमणि आई, उनके चरणों पर गिरी। उन्होंने कहा देव आप ही साक्षात काली। हाँ सही बात है, गलत बात भी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस साक्षात काली थे। क्यों? उस काली को उन्होंने अपनी श्रद्धा से साक्षात काली बना दिया था। रामकृष्ण परमहंस ने जब विवेकानंद से कहा काली के पास जा, नौकरी मांग ले, तो विशाल काय काली जमीन से लेकर आसमान तक चूम रही थी। उन्होंने एक काली को देखा, रामकृष्ण पर विवेकानंद ने, और वो कांप गए। ये काली कहाँ से थी? उसी पत्थर में से पैदा कर दी थी रामकृष्ण परमहंस ने, वो श्रद्धा से बनी थी। अब वो मूर्ति हाँ बिल्कुल है, अब उसमें कोई दम है? कोई दम नहीं है। चोर एक बार सोने की जीभ चुरा ले गए उसकी। अब ये पत्थर तो पत्थर ही था, पत्थर को साक्षात काली बना देने का श्रेय रामकृष्ण परमहंस को है। गीता कबीर का भी ऐसे था, कबीर को दीक्षा देने के लिए स्वामी रामानंद तैयार नहीं थे, उन्होंने सीढ़ियों बजा के सो गए। रामानंद जब रस से निकले तो उनका पैर पड़ गया अंधेरे में, दिखता कम था उनको, राम राम कह करके पीछे हट गए। विवेकानंद उसने कबीर ने कहना शुरू कर दिया, मेरे गुरु स्वामी रामानंद हैं, उन्होंने मुझे मंत्र दे दिया है, दीक्षा दे दी। स्वामी जी ने पूछा, अरे भाई ये क्या क्या कहता है तू, गलत सत बात क्यों कहता? नहीं, आपने मेरे सीने पर पैर रख दिया था रात को सीढ़ियों पर, अपने राम नाम कह दिया था, बस मेरे लिए तो आप गुरु हो गए, यही बात हो गई। बस ऐसे होता है, आप यहाँ की श्रद्धा कम कर लें, और श्रद्धा का अभाव रह गया तो आप बिल्कुल खाली हाथ चले जाएंगे। और जैसे और दूसरे आदमी मेहनत मजूरी करने वाले, दूसरे किसी काम से आने जाने वाले आते रहते हैं, आप भी उसी तरीके से आने जाने वालों में शुमार होंगे, और हमारा परिश्रम बेकार चला जाएगा और आपका सौभाग्य बेकार चला जाएगा। श्रद्धा जगाइए, कृपा करके श्रद्धा जगाइए, कृपा करके श्रद्धा जगाइए। आपको अंधश्रद्धा के लिए नहीं कुछ कहा जा रहा है, यहाँ श्रद्धा का परिपूर्ण वातावरण है। आप चाहें तो सच्चाई के साथ में और अपनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ में उसको परख भी सकते हैं। परखने के अलावा आप अपनी श्रद्धा से अगर परखने लायक स्थान न हो तो अभी उसको श्रद्धा से अपने लायक बना सकते हैं। श्रद्धा उत्पन्न कीजिए। आपके हिस्से का काम बाकी पड़ा है, हमने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया, आप और हम दोनों अपने अपने हिस्से का काम पूरा कर लें, आपके ये कल्प साधना का शिविर आपके लिए सौभाग्य से भरा पूरा होगा, ऐसा विश्वास। समाप्त।